ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
श्रोताओं, हाल ही में हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया। जब भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की और सुरक्षा की बात आती है तो भारत में उपभोक्ता अधिकारों और सुरक्षा की नीतियों का उदाहरण इस तरह से लिया जा सकता है कि जिस तरह से हमारे देश में बाजार बढ़ा है, हमने उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा को भी उसी तरह से सुनिश्चित किया है। और हमारे पास अब भारत में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से एक ऐसा तंत्र है जिसमें हर उपभोक्ता की शिकायत का समाधान है। तो आज हम कार्यक्रम में मुख्य तौर पर इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भारत में उपभोक्ता अधिकार को लेकर और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी शिकायतों के समाधान को लेकर और साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता को लेकर हाल ही में क्या प्रयास हुए हैं और इन प्रयासों को कैसे तेज किया गया है। इस मामले में हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं सचिव उपभोक्ता मामले मंत्रालय निधि खरे। आपका स्वागत है मैम कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब भी कोई शिकायत के बारे में हम लोग सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल कर लेते हैं और हमारी शिकायतों का समाधान मिल जाएगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कंज्यूमर हेल्पलाइन की अहमियत क्या है और बीते दिनों में इसे और ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय की ओर से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं।
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 एक ऐसी सुविधा है जिसपे कि कोई भी उपभोक्ता राष्ट्र के किसी भी कोने में वो कहीं पे भी हो और किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, वो अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। इसके लिए उसे किसी कार्यालय में नहीं आना पड़ता है, इसके लिए उसे किसी प्रकार का खर्चा नहीं जरूरी है और वो सीधे तौर पे अपनी बात को वो कह सकता है। इसके लिए किसी तरह के एडवोकेट की भी आवश्यकता नहीं है। हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया है, एक ऐसा हेल्पलाइन बनाई है जिसमें कि कॉल एजेंट्स भी आपकी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जो शिकायत है उसको लिखित रूप से दे सकते हैं। और ये हमारा जो हेल्पलाइन है ये 24 घंटे काम करता है, तो आपकी शिकायतें निरंतर, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे भी शिकायतें दर्ज होती चलती हैं। इसमें किसी प्रकार की छुट्टी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने इसमें अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका भी काफी हद तक उपयोग किया है और आज नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में तमाम ऐसे फीचर्स को ऐड किया है जिससे कि हमारे उपभोक्ता आसानी से वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। एनसीएच में हम करीब 17 भाषाओं में शिकायतों को लेते हैं और साथ ही साथ इसमें फोन, वेबसाइट, ईमेल, ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
इस हेल्पलाइन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ऐसा सुना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि अब कई गुना मामले सुलझाए जा रहे हैं।
बिल्कुल, पहले जब सिर्फ कॉल एजेंट्स के माध्यम से ही कॉल ली जाती थी, शिकायत दर्ज की जाती थी फिजिकली, तो वास्तव में जो शिकायतों की जो संख्या है वो बड़ी सीमित होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने स्पीच टू टेक्स्ट लिया है, यानी कि व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसकी शिकायत अपने आप लिखित रूप में दर्ज होती चलती है। इसी प्रकार से हमने एग्रीगेशन किया है। पहले क्या होता था कि हम एनालाइज करते थे किस सेक्टर में सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं या किस कंपनी के विरुद्ध सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं, उसको फिजिकल एनालिसिस करने में बहुत समय जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने डिजिटल टूल के माध्यम से, एआई के माध्यम से हम इसे डायरेक्टली एनालाइज कर रहे हैं और इससे एक तरह से हमें हर महीने टॉप 10 कंपनीज, वो कंपनीज जो कि शिकायत दर्ज हो जाने के बाद बहुत ही उदासीनता का व्यवहार रखती हैं और उसके निस्तारण में कोई सहयोग नहीं कर रही हैं, उनका हमें पता चल जाता है। और यदि शिकायतें काफी बड़ी संख्या में होती हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्लास एक्शन के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी शेयर करते हैं।
एक ग्राहक और उपभोक्ता के तौर पर अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हुई तो हमारे मन में बस एक ही सवाल आता है कि हम अदालत चले जाएं या अपनी शिकायत को लेकर कोई ठोस हमें समाधान मिले, लेकिन बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं कि बिना कानूनी लड़ाई लड़े भी उनका समाधान हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे जो प्री लिटिगेशन स्टेज होती है जिसमें मामलों को पहले ही सुलझाया जा सकता है, उसको लेकर क्या प्रयास उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, सो आपने बिल्कुल सही कहा कि उपभोक्ता की कई ऐसे शिकायतें होती हैं जिसको कहा जाए बिना कोर्ट कचहरी के भी उसे सुलझाया जा सकता है। और इसी कारण से हमने प्री लिटिगेशन स्टेज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को ही मजबूत तंत्र दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगी साथ में कि जैसे जैसे हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को हमने इसमें एम्प्लॉय किया है, तो अब जैसे कि वो कंपनियां जो कि सहयोग नहीं करती हैं सही समय पर और तुरंत निस्तारण करने में, उनके ऊपर कार्यवाही प्रारंभ हुई। और ऐसी तमाम कंपनीज के साथ हमने सेफ्टी प्लेज भी साइन किया, यानी कि हम कंपनी को भी एक तरह से नज कर रहे हैं, हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर की शिकायतें जो हैं वो कम से कम 2 दिनों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करें। एक प्रोएक्टिव माइंडसेट भी बना है, तो कंपनीज भी समझने लगी हैं कि अब ये कोई भी उत्पाद को बेचने के अलावा उन्हें उपभोक्ता की जो अधिकार है उनका भी संरक्षण करना उन्हें जरूरी है। और इसी में किसी भी उपभोक्ता की जो शिकायत है उसका ससमय उसके सेटिस्फेक्शन के अनुसार उसका समाधान करना बेहद आवश्यक है।
आपने अभी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA का नाम लिया, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस अथॉरिटी की क्या भूमिका है और कैसे बीते समय में इस अथॉरिटी को और ज्यादा प्रभावी बनाते हुए कई अहम कदम उठाए गए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं का संरक्षण और उनकी सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित हुई है।
जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें ये एक प्रावधान लाया गया कि कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं, कई बार यदि एक ही प्रोडक्ट को लेकर के अलग अलग कंज्यूमर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं तो नेचुरली ये इंडिविजुअल फाइट नहीं है, यानी कि ये व्यक्तिगत रूप से कंज्यूमर के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता कि ये तुम्हें शिकायत है तो तुम ही जाओ न्यायालय। वास्तव में इसमें एक अथॉरिटी का गठन किया गया जिसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कहा जाता है, और ऐसे तमाम शिकायतें जब एक ही प्रकार की हों, आइडेंटिकल हों, सिमिलर हों, तो ऐसे मामलों में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्लास एक्शन के लिए ऐसे मामलों को फिट मानता है। और इसमें चाहे वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स हो, ऐसे सभी मामलों में इस तरह की कंपनीज को नोटिस करता है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन के समय तमाम सारी फ्लाइट्स को एक तरह से ग्राउंड होना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने, जिन उपभोक्ताओं ने टिकट्स खरीद रखे थे 3-4 महीने पहले ही, उन्हें नहीं पता था कि एक समय पैंडेमिक लॉकडाउन हो जाएगा पूरे विश्व में, तो ऐसे में उनके भी पैसे रिफंड होने से वंचित हो गए। और जो एयरलाइंस हैं या जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो भी आनाकानी करने लगे कि भाई हम भी कैसे पैसा दें क्योंकि हमारा भी सब ग्राउंडेड हो गया है। लेकिन फिर इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया सभी एयरलाइंस को कि भाई आप जितने भी उपभोक्ता हैं उनको रिफंड कर दें। हम लोगों ने जब उसको प्रारंभ किया उसकी जांच करना, तो देखा कि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, एजेंसीज जिनके माध्यम से ये टिकट खरीदे गए थे, उन्हें एयरलाइंस से जब वापस मिल भी गया तो उन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाए कि वो पैसा उपभोक्ता को वापस चला जाता। और ऐसे मामले में फिर CCPA ने एक क्लास एक्शन प्रारंभ किया, और आपको खुशी होगी ये जान करके कि करीब 1450 करोड़ रुपए कंज्यूमर को टिकट के वापस रिफंड हो गए।
हमने देखा है कि 2019 में जो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के जो हमारे पास बड़े बदलाव आए और उसके बाद CCPA का गठन हो, बहुत सारे ऐसे हमारे पास अब विकल्प हैं या एक पूरा तंत्र है जिससे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती आती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश में जिस तरह से बाजार बढ़ा है, तो साथ ही दूर दराज के इलाकों तक, गांव तक ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए खरीदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में जो विक्रेता है उसको लेकर और जो ग्राहक है उसको लेकर दोनों स्तरों पर किस तरह से एक समन्वय हो और उपभोक्ताओं अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसको लेकर क्या हाल ही में प्रयास किए गए हैं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा, जिससे कि जो ई कॉमर्स का बाजार है ये एक साफ सुथरा बाजार हो और सही चीजें लोगों को परोसे।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ई कॉमर्स को भी शामिल किया गया, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी खरीद बिक्री होती है उसके सभी प्रकरण को भी उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के रूप में इसको जोड़ा गया। और उसके बाद ही ई कॉमर्स रूल्स 2020 को नोटिफाई किया गया जिसमें कि सभी ई कॉमर्स एंटिटीज को उनकी ड्यूटी, उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किस प्रकार से वो कंज्यूमर के राइट्स के लिए उत्तरदायी होंगे, इन सभी की बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई। और उसके बाद से CCPA ने तमाम ऐसे एक्शन लिए ई कॉमर्स एंटिटीज पे। अगर हम कोई भी मान लीजिए दूध का पैकेट ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितने लीटर का है और वो स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से हमें अगर कोई फूड आइटम है तो हमें बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट के बारे में पता होना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरर के बारे में पता होना चाहिए, हमें जो कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है उसका नंबर पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसके इंग्रेडिएंट्स या इस प्रकार की जो भी मैंडेटरी जानकारी है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको मिलती है। ई कॉमर्स एंटिटीज जब उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वो इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी ये इंश्योर किया गया कि भाई आप भी वो सारी जानकारी कंज्यूमर को दें। और इसमें आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने करीब 800 से भी अधिक नोटिसेस ई कॉमर्स एंटिटीज को दी जहां पे इन 6 जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस होते हैं उनमें से किसी एक को नहीं दिया। तो जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, किसी भी ई कॉमर्स एंटिटी को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो इस तरह से अगर अब आप देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अब वो सारी चीजों को कंफर्म किया जा रहा है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में वो उपभोक्ता स्वयं जाकर के दुकान पर देखता है, वो सारी चीजें उसको अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी मिल रही हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी आती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ रिव्यू के आधार पर अपना डिसीजन बनाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बारे में भी ये पता चला कि कई रिव्यूज तो पेड रिव्यूज हैं, फेक रिव्यूज हैं। एजेंसीज को ई कॉमर्स ने हायर किया और वो पेड रिव्यूज लिखने लगे। तो इस पर भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो इसका मानक है वो तय किया कि रिव्यू कैसे लिखा जाएगा, कौन लिखेगा, और इसके मापदंड तैयार किए गए। जो भी रिव्यू आए वो ट्रूथफुल और ऑनेस्ट हो। वो लोग भी इस चीज को अपने ध्यान में संज्ञान में लेते हैं कि सिर्फ सही रिव्यूज ही उनके प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शित किए जाएं। एक और हम काम कर रहे हैं जिसमें कि डार्क पैटर्न्स, आपने नाम सुना होगा,
हाँ जी, जी।
कि इसमें कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, वो इस प्रकार के AI टूल्स का सहारा लेकर के वो ग्राहक को उसकी चॉइस एक तो अनइन्फॉर्म्ड रखते हैं या फिर जो सही जानकारी है वो नहीं देते हैं और उसकी चॉइस को मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए आप एक फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हैं लेकिन आप पहले से इंश्योरेंस होल्डर हैं, लेकिन फिर भी वो एयरलाइंस आप इंश्योरेंस के लिए आपसे पूछती है कि भाई ये आप इंश्योरेंस 300 रुपए का लेंगे क्या इस फ्लाइट के लिए। कायदे से तो उसमें यस या नो ही आना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं, एक जगह तो वो यस लिखते हैं और दूसरी जगह नो ना लिख करके वो कहते हैं आई विल रिस्क माई लाइफ। यदि आप एक परिवार के साथ जा रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो अचानक से आपको एक गिल्ट फीलिंग आ जाएगी कि अरे भाई हमें यस ही क्लिक कर देना चाहिए। तो जबकि आपको जरूरत नहीं है, जबकि आपने इसकी चॉइस नहीं की, फिर भी उन्होंने अपने इस सिस्टम के माध्यम से आपको मैनिपुलेट किया, आपकी चॉइस को मैनिपुलेट किया और इसे हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस समझते हैं। तो ऐसे तमाम ई कॉमर्स एंटिटीज जो कि चैरिटी के नाम से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, 2 रुपए आपके चैरिटी में बिना आपसे पूछे, बिना आपकी इजाजत के उन्होंने वो 2 रुपए काट लिए और कह दिया कि ये तो चैरिटी के लिए हम दे रहे हैं। तो ग्राहक को ये हक है कि वो पूछे कि पहली चीज क्या वो इस चैरिटी में 2 रुपए डालना भी चाहता है कि नहीं, यदि वो डालना चाहता है तो ये किस चैरिटी में जा रहा है। और अगर वो ये सारी जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो ग्राहक के जो चॉइस है उसको मैनिपुलेट करें। अगेन हमने इसको एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना और CCPA ने इस पर कार्रवाई की।
जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि अब हमारा फोकस सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना नहीं है बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि को भी सुनिश्चित करना हमारा फोकस है, और इसी दिशा में आगे आने वाले समय में हम इन प्रयासों के रिजल्ट्स भी देखेंगे कि जिस तरह से तेजी से मामलों को सुलझाया जा रहा है, नियमों को सख्त किया जा रहा है और रेगुलेशंस को मजबूत किया जा रहा है, ग्राहकों की और उपभोक्ताओं की उससे सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में जुड़ी और विस्तार से उपभोक्ता संरक्षण और कारों को लेकर जो हाल ही में सरकार के प्रयास हैं उस पर आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे उपभोक्ता अधिकार और जागरूकता के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।